शांति, ओम शांति। हम सभी बच्चे बाबा की ईश्वरीय संतान भी है तो ईश्वरीय विद्यार्थी भी है, और शिव बाबा से हम चार सब्जेक्ट सीखते हैं ना। बाबा की मुरलियों में इन चारों सब्जेक्ट्स पर बाबा समझाते हैं, हम सुनते हैं, ज्ञान योग धारणा सेवा। तो इन चारों सब्जेक्ट्स का आपस में कितना संबंध है? बाबा कहते हैं ज्ञान के बिना योग नहीं लगेगा, योग के बिना ज्ञान पूरा समझ में नहीं आएगा, धारणा नहीं होगी तो भी योग नहीं लगेगा, योग नहीं होगा तो धारणा भी नहीं होगी, और धारणा नहीं होगी तो सेवा में सफलता भी नहीं मिलेगी। इसलिए चारों सब्जेक्ट्स का आपस में बहुत संबंध है, इसलिए एक भी सब्जेक्ट को कम नहीं आंकना है। ज्ञान तो दिखाई देता है, यहाँ कितने क्लासेस कराते हैं, भाषण करते हैं, बहुत कुछ करते हैं तो पता चलता है ज्ञान है, पर योग गुप्त है, पता नहीं चलता है, क्योंकि ये तो अजपा जाप है, कोई वो योग नहीं है जो जाप करने बैठना है, तो ये तो गुप्त है। धारणा भी हमारी उस गुप्त योग के आधार पर ही है, और सेवा की सफलता भी उसी के आधार पर है। इसलिए बाबा कहते हैं योग है मुख्य। तो योग माना बाबा से प्यार, और बाबा से प्यार का भी आधार है निश्चय। अगर निश्चय नहीं तो फिर बाबा से प्यार भी कैसे होगा, और फिर बाबा से प्यार नहीं तो कितने सालों तक भी कोई चले परंतु फिर वो भागंती हो जाते हैं। तो इसीलिए बाबा कहते हैं चारों ही पिलर हमारे ब्राह्मण जीवन के आधार हैं, एक भी कम नहीं समझना है। तो आज बाबा ने विशेष रूप से इस पर ध्यान खिंचवाया है। सुनते हैं बाबा के महावाक्य आज 12/9/2025 है। मीठे बच्चे, तुम्हारी पढ़ाई का सारा मदार है योग पर। पढ़ाई भी पूरी तब समझ में आएगी जब योग होगा। तुम्हारी पढ़ाई का सारा मदार है योग पर। योग से ही आत्मा पवित्र बनती है, धारणा भी तब होगी। विकर्म विनाश होते हैं। प्रश्न है, कई बच्चे बाप का बनकर फिर हाथ छोड़ देते हैं, कारण क्या होता है? बाप का बने, चारों सब्जेक्ट्स की धारणा भी कर रहे हैं, फिर अचानक छोड़ देते हैं। तो बाप को पूरी रीति न पहचानने के कारण, ज्ञान पूरा समझा ही नहीं है, नहीं तो क्यों छोड़ेंगे? बाप को पूरी रीति न पहचानने के कारण, निश्चय बुद्धि न होने के कारण 8-10 वर्ष के बाद भी बाप को फारकती दे देते हैं, हाथ छोड़ देते हैं। फिर क्या होगा उसका नतीजा? पद भ्रष्ट हो जाता है। फिर दूसरा कारण क्यों बाबा का हाथ छोड़ते हैं? एक तो पहचान पूरी नहीं, निश्चय नहीं, तो हाथ छोड़ देते हैं, और दूसरा कारण है क्रिमिनल आय हो जाती है। क्यों क्रिमिनल आय होती है? क्रिमिनल आय होने से माया की ग्रहचारी बैठ जाती है, वास्तव में क्रिमिनल आई हुई और माया की ग्रहचारी बैठी। अवस्था नीचे ऊपर होती रहती है तो पढ़ाई छूट जाती है। धारणा नीचे ऊपर हुई तो फिर पढ़ाई पर भी असर पड़ता, योग पर भी पड़ता, सब सब्जेक्ट्स पर पड़ता है। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझा रहे हैं, अभी समझते हो कि हम सब रूहानी बेहद के बाप के बच्चे हैं। इनको कहा जाता है रूहानी शिव बाबा। हमारे ब्रह्मा बाबा भी रूहानी हो गए ना, अभी तो अव्यक्त हैं। तो रूहानी बाप दादा के हम बच्चे हैं, क्योंकि इनको कहा जाता है बाप दादा। केवल शिव बाबा के बच्चे नहीं है, दादा के भी बच्चे हैं। जैसे तुम रूहानी बच्चे हो, वैसे फिर ये बच्चा भी रूहानी बच्चा है। ये शिव बाबा का बच्चा है, फिर बाबा कहते ये वनी है। हाँ, ब्रह्मा बाबा हमारा पिता है, फिर कहेंगे हम वो माँ है। तो बाबा कहते हैं ये सब वंडरफुल बातें इस ज्ञान मार्ग में। जैसे तुम रूहानी बच्चे हो, वैसे ये ब्रह्मा भी रूहानी बच्चा है शिव बाबा का। शिव बाबा को रथ तो जरूर चाहिए ना, इसलिए जैसे तुम आत्माओं को ऑर्गन्स मिले हुए हैं कर्म करने लिए, वैसे शिव बाबा का भी ये रथ है, क्योंकि ये कर्म क्षेत्र है। कुछ भी कर्म करना है तो शरीर तो चाहिए, तभी तो कर्म होगा इस कर्म क्षेत्र पर। क्योंकि ये कर्म क्षेत्र है जहाँ कर्म करना होता है। अब वो है घर जहाँ आत्माएं रहती है। आत्मा ने अब जाना है, हमने जान लिया है, अभी क्या जान लिया है कि हमारा घर शांति धाम है। वहां ये खेल नहीं होता, क्योंकि शरीर ही नहीं है। आत्मा और शरीर का मेल हो तब तो खेल हो, बिना आत्मा शरीर के मेल के खेल कैसे हो। तो वहां तो शरीर है ही नहीं, तो खेल भी नहीं है परम धाम में। वहां ये खेल नहीं होता, बतियां आदि भी कुछ नहीं होती। परम धाम तो स्व प्रकाशित धाम है, वहां बतियां नहीं चाहिए। तो स्व प्रकाशित धाम जो बाबा कहते सुनहरा लाल प्रकाश, ये स्व प्रकाशित है, वो धाम ही उसी प्रकाश का है। तो बतियां आदि कुछ नहीं होती, सिर्फ आत्माएं रहती है। यहां आती है पाठ बजाने, तो तुम्हारी बुद्धि में है कि यह बेहद का ड्रामा है। जो एक्टर्स हैं उन्हों की एक्ट शुरू से लेकर अंत तक तुम बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो। यहाँ कोई साधु संत आदि नहीं समझाते हैं, यहाँ हम बच्चे बेहद के बाप के पास बैठे हैं। अब हमको वापस जाना है, तो उसके लिए क्या करना होगा? पवित्र तो जरूर बनना है आत्मा को, बिना पवित्र बने आत्मा वापस नहीं जा सकती। ऐसे नहीं कि शरीर भी यहाँ पवित्र बनना है, आत्माओं को पवित्र बनना है, शरीर नहीं बनेंगे पवित्र यहाँ, क्योंकि शरीर तो तमो प्रधान प्रकृति के। फिर ये प्रकृति जब सतो प्रधान बने तब सतो प्रधान शरीर मिले, ये शरीर नहीं कोई सतो प्रधान बन जाएगा। तो बाबा कहते ऐसे नहीं कि शरीर भी यहाँ पवित्र बनना है, नहीं, आत्मा पवित्र बनती है। शरीर तो पवित्र तब बने जब पांच तत्व भी सतो प्रधान हो। अब तुम्हारी आत्मा पुरुषार्थ कर पावन बन रही है। पहले पवित्र बनती है, फिर पवित्र हाँ बन करके घर जाती है, फिर पावन आत्मा के रूप में पावन शरीर धारण करती है। वहाँ आत्मा और शरीर दोनों पवित्र होते हैं, यहाँ नहीं हो सकते। आत्मा पवित्र बन जाती है तो फिर क्या होता है, तो फिर पुराना शरीर छोड़ती है। पवित्र आत्मा अपवित्र शरीर में नहीं रह सकती है, तो पुराना शरीर छोड़ती है, फिर नए तत्वों से नए शरीर बनते हैं। तुम जानते हो हमारी आत्मा बेहद के बाप को याद करती है वा नहीं? हर एक की आत्मा जानती है कि मैं आत्मा बेहद के बाप को कितना याद करती हूँ। ये तो हर एक को अपने से पूछना है, मैं कितना याद कर रहा हूँ बाबा को। पढ़ाई का सारा मदार है योग पर। पढ़ाई तो सहज है, समझ गए कि ये चक्र कैसे फिरता है, पर मुख्य बात है याद की यात्रा। ये अंदर गुप्त है, अजपा जाप है, जाप नहीं है बाहर का कोई, ये हमारी याद नहीं है, ये अंदर गुप्त है, देखने में थोड़ी आता है। बाबा नहीं कह सकते कि ये बहुत याद करते हैं वा कम, पता नहीं चलता, इसलिए बाबा ये नहीं कह सकते। हाँ, धारणा कैसी है तो वो थोड़ा बहुत पता चलता है, पर ज्ञान तो बहुत सहज है, धारणा नहीं भी होगी तो भी ज्ञान सुना सकेंगे। बाबा नहीं कह सकते कि ये बहुत याद करते हैं वा कम, हाँ ज्ञान के लिए बता सकेंगे कि ये ज्ञान में बहुत तीखा है। याद का तो कुछ देखने में नहीं आता है, ज्ञान तो मुख से बोला जाता है, याद तो है अजपा जाप। जाप अक्षर भक्ति मार्ग का है, ज्ञान मार्ग में हम जाप शब्द नहीं कहते, कोई जपते नहीं हम। जाप माना कोई का नाम जपना, यहां तो आत्मा को अपने बाप को याद करना है। तुम जानते हो हम बाप को याद करते करते पवित्र बनते बनते क्या हो जाएंगे? जाप याद करते करते पवित्र बनते बनते मुक्ति धाम शांति धाम जाकर पहुंचेंगे। ऐसे भी नहीं, हाँ शांति धाम जाकर पहुंचेंगे, पर ऐसे भी नहीं कि ड्रामा से मुक्त हो जाएंगे, कोई मोक्ष मिल जाएगा सदा के लिए, हम चले गए परम धाम फिर आएंगे ही नहीं। तो ऐसे नहीं कि ड्रामा से मुक्त हो जाएंगे। मुक्ति का अर्थ है, क्या है मुक्ति का अर्थ? दुख से मुक्त हो शांति धाम जाए फिर सुख धाम में आएंगे। पवित्र जो बनते हैं वो फिर सुख भोगते हैं, शांति में तो जाएंगे फिर वो सुख भोगते हैं। अब पवित्र नहीं बने, सजाएं खूब खाई तो फिर शांति धाम में बैठेंगे, सुख धाम में नहीं आएंगे। पवित्र की महिमा है, पवित्र जो बनते हैं वो सुख भोगते हैं, अपवित्र मनुष्य फिर उनकी खिदमत करते हैं, पूजा करते हैं ना, क्या नहीं उनकी खिदमत करते हैं, उनकी मूर्तियों की उनकी खिदमत करते हैं। पवित्र की महिमा है, इसमें ही मेहनत है। आंखें बड़ा धोखा देती है, गिर पड़ते हैं नीचे ऊपर तो सबको होना पड़ता है। जब तक कर्मातीत अवस्था न हो तब तक नीचे ऊपर तो होना पड़ता है। ग्रहचारी सबको लगती है, भल बाबा कहते हैं बच्चे भी समझा सकते हैं, फिर कहते हैं माता गुरु चाहिए, है ना, भाई भी समझा सकते हैं, भाई भी सेंटर कई चलाते हैं, लेकिन वो जरूर मांगनी करते हैं कि कोई बहन चाहिए सेवा के लिए, हाँ ज्ञान सुनाने लिए, मुरली सुनाने लिए बहन चाहिए, फिर कहते हैं माता गुरु चाहिए, क्योंकि अब माता गुरु का सिस्टम चला है। लौकिक में भी हम देखते हैं टीचर जो है भाई से ज्यादा, पुरुष से ज्यादा बहन, अगर क्लास टीचर है वो बहुत अच्छा क्लास को हैंडल करेगी, हाँ। परंतु बाबा कहते हैं भाई, भाइयों का आज दुनिया में राज्य है ना, क्योंकि पुरुष प्रधान समाज है, लेकिन धीरे धीरे बाबा ने कैसे माताओं को आगे किया है। तो फिर कहते माता गुरु चाहिए, क्योंकि अब माता गुरु का सिस्टम चलता है और सबसे पहली गुरु तो माँ बनती है ना बच्चे का। आगे पिताओं का था, तो पुरुष प्रधान समाज में सब पुरुषों का ही हक था, अधिकार था। आगे पिताओं का था, अभी पहले पहले कलश माताओं को मिलता है। माताएं मेजॉरिटी में है, बाबा के बच्चे भी। कुमारियां राखी बांधती है पवित्रता के लिए। तो भगवान कहते हैं काम महाशत्रु है, इस पर तुम जीत पहनो। रक्षाबंधन वास्तव में बाबा कहते हैं ये पवित्रता की निशानी है। रक्षाबंधन पवित्रता की निशानी है। वो लोग राखी बांधते हैं पर पवित्र तो बनते नहीं है, समझते बस बहन भाई का प्यार है, बस इतना ही समझते हैं, और आगे तो राखी का क्या महत्व है वो तो समझते नहीं है। पवित्र तो बनते नहीं है, वो सब है आर्टिफिशियल राखी। खाली राखी बांध ली बस, और बहन को तो यही बुद्धि में आएगा मेरा भाई मुझे क्या देगा, कितना देगा, और अगर ज्यादा नहीं दे पाता है तो नाराज भी हो जाती है। तो वहां तो बाबा कहते वो आर्टिफिशियल राखी है, कोई पावन बनाने वाले नहीं है। अब इसमें तो ज्ञान चाहिए कि राखी का सही अर्थ क्या है, इसमें तो ज्ञान चाहिए। अभी तुम राखी बांधते हो तो अर्थ भी समझाते हो। क्या अर्थ समझाते हो? कि अब भगवान को कोई दान चाहिए, दान चाहिए, विकारों का दान दो। अर्थ भी समझाते हो, ये प्रतिज्ञा कराते हो। जैसे सिख लोगों को कंगन निशानी होती है, वास्तव में ये जो पहनते हैं कड़ा भी पहनते हैं सिख लोग, ये पवित्रता की निशानी है। स्त्रियां भी शादी करती है तो चूड़ियां पहनती है। तो हमने पूछा है किसी से कि भाई इतनी चूड़ियां क्यों पहनती है, शादी के पहले इतना नहीं पहनते, पर शादी के बाद जरूर पहनती। तो कहा ये भी वास्तव में व्रत की निशानी है, जैसे मंगलसूत्र तो ये चूड़ियां भी, क्योंकि बस एक पति दूसरा न कोई है, तो ये उनका व्रत है, तो इसीलिए चूड़ियां डालते हैं। तो ये कंगन भी पवित्रता की निशानी है। तो बाबा कहते हैं ये प्रतिज्ञा कराते हैं, तो सिख लोगों को कंगन निशानी होती है, परंतु पवित्र तो बनते नहीं। पतित को पावन बनाने वाला सर्व का सदगति दाता एक है, वो भी देहधारी नहीं है, वो एक है पर वो देहधारी नहीं है। पानी की गंगा तो इन आंखों से देखने में आती है, अब बाप तो सदगति दाता है, उनको इन आंखों से नहीं देखा जाता। आत्मा को कोई भी देख नहीं सकते कि वो क्या चीज है। कहते हैं हमारे शरीर में आत्मा है, अब उनको देखा है, अब आपने कहा कि हमारे शरीर में आत्मा है, तो फिर हम उनको कहते हैं आप उनको देखते हैं, देखा है, तो कहेंगे नहीं। और सब चीजें जिसका नाम है वो तो देखने में जरूर आती है, परमात्मा को भी याद करते हैं पर देखने में तो कुछ नहीं आएगा। लक्ष्मी नारायण को देखा जा सकता है इन आंखों से, लिंग की भल पूजा करते हैं परंतु वो कोई यथार्थ रीति तो है नहीं। शिव बाबा इतना लिंग आकार तो है नहीं, वो तो ज्योति बिंदु है, तो बाबा कहते इतना ये कोई यथार्थ रीति तो नहीं है ना। देखते हुए भी जानते नहीं है कि परमात्मा क्या है, ये कोई नहीं जान सकते। लिंग को देखते भी हैं, ज्योतिर्लिंगम कहते हैं, ये ज्योति है, बंधु बाबा कहते हैं जानते नहीं, ये कोई नहीं जान सकते। आत्मा तो बहुत छोटी बिंदी है, देखने में नहीं आती है, न आत्मा को न परमात्मा को देखा जा सकता है, जाना जा सकता है, जान सकते हैं पर इन आंखों से नहीं देख सकते हैं, दिव्य दृष्टि से तो जरूर देख सकते हैं। अभी तुम जानते हो हमारा बाबा आया हुआ है इसमें। इस शरीर की अपनी आत्मा भी है। फिर परम पिता परमात्मा कहते हैं, मैं इनके रथ पर विराजमान हूँ, इसलिए तुम बाप दादा कहते हो। ये हमारा कोड वर्ड है, बाप दादा, केवल ब्राह्मण बच्चे ही कह सकते हैं। तो इस इनके रथ पर विराजमान हूँ, इसलिए बाप दादा कहते हो। अब दादा को तो इन आंखों से देखते हो, बाप को नहीं देखते हो। जानते हो बाप तो ज्ञान का सागर है, वो इस शरीर द्वारा हमको ज्ञान सुना रहे हैं। वो ज्ञान का सागर है, पतित पावन है। अब मीरा का रास्ता कैसे बताएंगे? पतित पावन है, ज्ञान का सागर है, तो ज्ञान कैसे देंगे? पतित से पावन बनने का रास्ता कैसे बताएंगे? प्रेरणा से तो कोई काम नहीं होता है। भगवान आते हैं ये किसको भी पता नहीं है। जो शिव जयंती मनाते हैं, शिवरात्रि भी मनाते हैं, ये शिव का अवतरण दिवस है। तो लेकिन बाबा कहते हैं शिव कोई नहीं जानते हैं, शिवरात्रि तो मनाते हैं। तो बाबा कहते हैं भगवान आते हैं ये किसको भी पता नहीं है। शिव जयंती भी मनाते हैं तो जरूर यहाँ आता होगा ना। तुम जानते हो अभी वो हमको पढ़ा रहे हैं। हाँ, केवल आता ही नहीं है पर वो अभी हमको पढ़ा रहे हैं। बाबा इसमें आकर पढ़ाते हैं। तो बाप को पूरी रीति न पहचानने के कारण, निश्चय बुद्धि न होने के कारण, फिर 8-10 वर्ष के बाद भी फारकती दे देते हैं। क्यों फारकती दे देते हैं? क्योंकि बाप को अच्छी पूरी रीति पहचाना नहीं, निश्चय बुद्धि हुए ही नहीं, तो बाप को फारकती दे देते हैं। माया बिल्कुल ही अंधा बना देती है। बाप का बनकर फिर छोड़ देते हैं तो फिर पद भ्रष्ट हो जाता है। अब तुम बच्चों को बाप का परिचय मिला है, अंधे हो जाते हैं, माना ज्ञान का तीसरा नेत्र ही बंद हो जाता है, वो ज्ञान फिर मुख से निकाल ही नहीं सकते। है ऐसे भी है, ज्ञान पहले इतना अच्छा सुनाते थे, फिर बाबा को छोड़ दिया तो फिर उनसे कुछ पूछो वो तो भाई हम सब भूल गए, क्योंकि ज्ञान बुद्धि से उड़ गया, ज्ञान का नेत्र ही बंद हो गया। तो बाबा कहते हैं अब तुम बच्चों को बाप का परिचय मिला है तो औरों को भी देना है। ऋषि मुनि आदि तो सब नीति नीति करते गए, आगे तुम भी नहीं जानते थे। अभी तुम कहेंगे, अभी तुम क्या कहेंगे? नीति नीति नहीं कहेंगे, नीति माना नीति, इनका अंत नहीं हम पा सकते हैं, पर तुम ऐसे नहीं कहेंगे। तुम क्या कहेंगे? तुम कहेंगे कि हम जानते हैं, आत्मा को भी जानते हैं, परमात्मा को भी जानते हैं, हम उनका बन गए हैं, उनसे वर्षा ले रहे हैं। हाँ, निश्चय से कहेंगे। आगे तुम भी नहीं जानते थे, अभी तुम कहेंगे हाँ हम जानते हैं। तो जानना माना आस्तिक बनना। और बाबा नास्तिक की क्या डेफिनेशन देते हैं? जो भगवान को नहीं जानते। केवल मानना ही बड़ी बात नहीं है पर जानते नहीं, इसीलिए नास्तिक। अभी तुम कहेंगे हाँ हम जानते हैं तो आस्तिक हो गए। सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है ये भी तुम जानते हो। सारी दुनिया और तुम खुद इस पढ़ाई से पहले नास्तिक थे। सारी दुनिया तो है ही है, जानती नहीं है भगवान को, पर हम भी बाबा का बनने से पहले नहीं जानते थे तो हम भी सब नास्तिक थे। तो बाबा कहते सारी दुनिया और तुम खुद इस पढ़ाई के पहले नास्तिक थे। अब बाप ने समझाया है तो तुम कहते हो, बाबा ने समझाया अपना परिचय दिया है तो तुम कहते हो हमको परम पिता परमात्मा बाप ने समझाया है, आस्तिक बनाया है हमको भगवान ने। हम रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते थे, पहले भी नहीं जानते थे। अब हमको बाबा ने आस्तिक बनाया है। तो बाप है रचयिता, बाप ही संगम पर आकर के नई दुनिया की स्थापना भी करते हैं और पुरानी दुनिया का विनाश भी करते हैं। पुरानी दुनिया के विनाश के लिए कैसे पता चलता है विनाश होना है? तो पुरानी दुनिया के विनाश के लिए ये महाभारत लड़ाई है, जिसके लिए समझते हैं महाभारत लड़ाई है ये भी कहते हैं। पर उसके लिए क्या समझते हैं? कि समझते हैं कि उस समय तो श्री कृष्ण था, तो इसीलिए ये वही महाभारत लड़ाई कैसे होगी, श्री कृष्ण तो है नहीं, तो उस समय श्री कृष्ण था ऐसे कह देते। अभी तुम समझते हो श्री कृष्ण नहीं था महाभारत लड़ाई के समय, लेकिन हाँ श्री कृष्ण का अंतिम जन्म ब्रह्मा और फिर शिव बाबा था, शिव बाबा जरूर था, श्री कृष्ण नहीं था। अभी तुम समझते हो निराकार बाप था, अब उनको देखा तो नहीं जाता है, श्री कृष्ण का तो चित्र है, शिव बाबा का तो कोई चित्र है ही नहीं, वो तो विचित्र है। श्री कृष्ण का तो चित्र है देखा जाता है, शिव को देख नहीं सकते। श्री कृष्ण तो है सत्यु का प्रिंस, फिर वही फीचर्स वाला श्री कृष्ण का जो फीचर्स होंगे सत्युग में पहले जन्म में, फिर 84 जन्म में फिर वही फीचर्स तो होंगे ही नहीं। तो बाबा कहते श्री कृष्ण तो है सत्युग का प्रिंस, वही फीचर्स फिर तो हो न सके। श्री कृष्ण भी कब और कैसे आया ये भी कोई नहीं जानते, शिव बाबा को भी नहीं जानते, फिर श्री कृष्ण भी कब आया कैसे आया बाबा कहते वो भी नहीं जानते। श्री कृष्ण को तो श्री कृष्ण को कंस की जेल में दिखाते हैं, जन्म तो उनका दिखाते ना कंस की जेल में हुआ, तो श्री कृष्ण को कंस की जेल में दिखाते हैं। अब कंस सत्युग में था क्या? कंस तो सत्युग में नहीं होगा, तो वो तो असुर था, तो जब श्री कृष्ण का जन्म होता है तो असुर तो सब खत्म हो जाते हैं। तो क्या कंस क्या सत्युग में था, ये हो कैसे सकता है? कृष्ण के समय कंस तो है नहीं, तो ये हो कैसे सकता है? कंस तो असुर को कहा जाता है, इस समय सारी आसुरी संप्रदाय है ना, एक दो को मारते काटते रहते हैं, दैवी दुनिया थी ये भूल गए हैं, समझते ऐसे ही है सारा दुनिया ऐसे ही चलती है, दैवी दुनिया थी ये भूल गए हैं। ईश्वरीय दैवी दुनिया परमात्मा ने स्थापन की, स्वयं ईश्वर ने स्थापन की, ये भी तुम्हारी बुद्धि में है नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार कि दैवी दुनिया स्वयं ईश्वर ने स्थापन की, ये तुम्हारी बुद्धि में भी नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार है। अभी तुम हो ईश्वरीय परिवार, फिर वहां होंगे सत्युग में दैवी परिवार, इस समय ईश्वर तुमको लायक बना रहे हैं स्वर्ग का देवी देवता बनाने, लायक बना रहे स्वर्ग का देवी देवता कैसे बने उसके लिए ईश्वर हमें लायक बना रहे हैं। तो बाप पढ़ा रहे हैं, इस संगम युग को तो कोई भी नहीं जानते हैं, कोई भी शास्त्र में इस पुरुषोत्तम संगम युग की बात ही नहीं है। पुरुषोत्तम युग अर्थात पुरुषोत्तम संगम युग अर्थात जहाँ पुरुषोत्तम बनना होता है, सत्युग को कहेंगे, सत्युग को भी पुरुषोत्तम युग कहेंगे क्योंकि वह उत्तम पुरुष है, परंतु जहाँ उत्तम पुरुष बनते हैं वो तो ये संगम युग है, तो सत्युग को तो कहेंगे पुरुषोत्तम युग, पर इस समय तो मनुष्य पुरुषोत्तम नहीं है, इनको तो कनिष्ठ तमो प्रधान कहेंगे। ये सब बातें सिवाय तुम ब्राह्मणों के और कोई नहीं समझ सकते। तो बाप कहते हैं ये है आसुरी भ्रष्टाचारी दुनिया, सत्युग में ऐसा कोई वातावरण नहीं होता, जैसे आज का वातावरण है कलयुगी दुनिया का, सतयुग में ऐसा कोई वातावरण नहीं होता। वो थी श्रेष्ठाचारी दुनिया, उनके चित्र हैं, बरोबर ये श्रेष्ठाचारी दुनिया के मालिक थे। भारत के राजाएं होकर गए हैं तो पूजे जाते हैं, लक्ष्मी नारायण और जो भी उनकी वंशावली सतयुग त्रेता की, ये सब भारत के राजाएं होकर के गए हैं तो इसलिए पूजे जाते हैं। पूज्य पवित्र थे जो ही फिर पुजारी बने, पुजारी भक्ति मार्ग को और पूज्य ज्ञान मार्ग को कहा जाता है। पूज्य सो पुजारी, फिर पुजारी सो पूज्य कैसे बनते हैं ये भी तुम जानते हो। इस दुनिया में पूज्य इस समय कोई भी हो न सके। पूज्य एक परम पिता परमात्मा को और दूसरा देवताओं को ही कहा जाता है, वही पूज्य है। परम पिता परमात्मा है सबका पूज्य, सब धर्म वाले उनकी पूजा करते हैं। ऐसे बाप का जन्म भी यहाँ ही गाया जाता है, जो सबका पूज्य है ऐसे बाप का जन्म स्थान यहाँ ही गाया हुआ है भारत में। शिव जयंती यहाँ मनाई जाती है, परंतु मनुष्यों को कुछ भी पता नहीं कि उनका जन्म भारत में होता है। शिव का जन्म भारत में होता है ये मनुष्यों को पता ही नहीं। आजकल तो शिव जयंती की हॉलिडे भी नहीं करते हैं, छुट्टी भी नहीं मनाते हैं, शायद आजकल करते हैं शिव जयंती की छुट्टी देते हैं, लेकिन फिर भी वो ऑप्शनल है। तो बाबा कहते हैं वो हॉलिडे भी नहीं करते हैं, जयंती मनाओ ना मनाओ तुम्हारी मर्जी, सरकार कहती है चलो आपके ऊपर है मनाओ या ना मनाओ, मनानी है छुट्टी लेनी है तो लो, जयंती मनाओ न मनाओ तुम्हारी मर्जी, ऐसे कह देते हैं। ऑफिशियल हॉलिडे नहीं है। जो शिव जयंती को नहीं मानते हैं वो तो अपने काम पर चले जाते हैं, और जो शिव जयंती के दिन व्रत रखते हैं, उपवास करते हैं, जागरण करते हैं, वो तो मानेंगे। हाँ क्या कहते हैं, अभी है शिव जयंती की छुट्टी करते हैं। अच्छा, तो जो शिव जयंती को नहीं मानते वो तो अपने काम पर चले जाते हैं। बहुत धर्म है ना, अब और धर्म वाले तो नहीं मानेंगे ना शिव जयंती को, बहुत धर्म है ना। सतयुग में ऐसी बातें होती नहीं, वहां ये वातावरण ही नहीं। सतयुग में, सतयुग है ही नई दुनिया और एक ही धर्म, वहां ये पता नहीं पड़ता। सतयुग में क्या पता नहीं पड़ता कि हमारे बाद चंद्रवंशी राज्य होगा, हमारे पहले कलयुग था ये भी पता नहीं होगा, और हमारे बाद त्रेता युग आएगा चंद्रवंशी राज्य होगा ये भी नहीं पता होगा। यहाँ तुम सब जानते हो, ये पास्ट हो गए सब जानते हो। सतयुग में तुम होंगे वहां किस पास्ट को याद करेंगे, अब कल्प ही नया शुरू हुआ है तो किस हिस्ट्री को याद करेंगे, किस भूतकाल को याद करेंगे, कोई नहीं, क्योंकि कल्प ही नया शुरू हुआ है, एकदम नए नए परम धाम से आए हैं, वहां किस पास्ट को याद करेंगे। पास्ट तो हुआ कलयुग, उस सतयुग से पहले तो कलयुग था, अब उसको क्यों याद करेंगे देवताएं। उनकी हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनने से क्या फायदा, कलयुग की हिस्ट्री ज्योग्राफी देवताएं क्यों सुनेंगे, क्या फायदा होगा उनको, कुछ भी नहीं। उनकी हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनने से क्या फायदा। यहां तुम जानते हो हम बाबा के पास बैठे हैं, बाबा टीचर भी है सतगुरु भी है, बाप आए हैं सबकी सदगति करने, सभी आत्माओं को जरूर ले जाएंगे, हाँ जरूर ले जाएंगे सभी आत्माओं को। मनुष्य तो दे अभिमान में आकर कहते हैं, हाँ जो दे अभिमानी है वो भी जानते हैं कि विनाश होना है, तो क्या कहते हैं विनाश होना है, तो कहते हैं सब मिट्टी में मिल जाना है, कहते भी हैं हाँ, सब यहाँ जो भी सब मिट्टी में मिल जाना है, पर ये नहीं समझते यहाँ का तो सब मिट्टी में नहीं जाना है, पर क्या नहीं समझते हैं कि आत्माएं तो चली जाएगी, वो थोड़ी मिट्टी में मिल जाएगी, शरीर मिट्टी में मिल जाएंगे, आत्माएं थोड़ी मिट्टी में मिलेगी। ये नहीं समझते हैं आत्माएं तो चली जाएगी, बाकी ये शरीर मिट्टी के बने हुए हैं, ये पुराना शरीर खत्म हो जाता है। मनुष्य शब्द में इंग्लिश में कहते हैं ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन और बीइंग, तो ह्यूमन पार्ट जो है उसको कहते हैं ह्यूमस, ह्यूमस माना मिट्टी, तो ये जो शरीर है वो ह्यूमन, वो मिट्टी है, और बीइंग माना आत्मा, तो आत्मा ही थोड़ी मिट्टी बन जाएगी, वो तो उड़ जाएगी परम धाम में। तो बाबा कहते हैं हम आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा जाए लेती है, ये इस दुनिया में हमारा अंतिम जन्म है। सब पतित हैं, सदैव पावन तो कोई रह नहीं सकता। ये भी कई प्रश्न करते हैं ना, अगर हम पावन बन जाते हैं सतयुग में, सब पावन है, फिर पतित क्यों बनते हैं? हाँ, सदा पावन रहने चाहिए ना, फिर कलयुग क्यों आता है? सदा सतयुग रहना चाहिए, लेकिन ये प्रकृति का नियम है। हर चीज जो भी प्राकृतिक है वो सतो रजो तमो से जरूर गुजरेगी, इसीलिए ये हो ही नहीं सकता कि सदा सतयुग रहे। तो बाबा कहते हैं सदैव पावन तो कोई रह नहीं सकते हैं, सतो प्रधान सतो रजो तमो होते ही हैं। वो लोग तो कह देते हैं सब ईश्वर के ही रूप है, ईश्वर ने अपने अनेक रूप बनाए हैं, किस लिए? भगवान के ये सारे रूप है, और किस लिए इतने सारे रूप बनाए हैं भगवान ने? खेलपाल करने के लिए, खेलपाल करने के लिए। हिसाब किताब कुछ भी नहीं जानते, खेलपाल में ये कैसे पावन से पतित बनते हैं, चलो खेलपाल है ये सब, सृष्टि मंच पर हम आत्माएं खेल रही है, लेकिन बाबा कहते हिसाब किताब कुछ नहीं जानते। सतयुग से त्रेता कैसे आता है, द्वापर कैसे आता है, ये खेल, ये हिसाब किताब कुछ नहीं जानते हम, न खेलपाल करने वाले को जानते हैं। चलो अगर ये सब खेल पाल करने लिए भगवान के अनेक रूप है, परंतु वो कौन है जो अनेक रूप धारण करके खेल पाल करते हैं? न खेल पाल करने वाले को जानते हैं, तो बाप ही बैठकर वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाते हैं। खेल में तो हर एक का पार्ट अलग अलग है, सबका पोजीशन अलग अलग है, जो जैसा पोजीशन वाला होता है उनकी उस अनुसार महिमा होती है। ये सब बातें बाप संगम पर ही समझाते हैं। हाँ, शिव बाबा की का पोजीशन अलग है, लक्ष्मी नारायण का पोजीशन अलग है, सबका पोजीशन अलग है, उस अनुसार उनकी महिमा होती है। तो ऐसे थोड़ी कहेंगे सब भगवान ही सारे खेलपाल करता है। ये सब बातें बाप संगम पर ही समझाते हैं। सतयुग में फिर सतयुग का ही पार्ट चलेगा, सतयुग में फिर कलयुग का पार्ट थोड़ी चलेगा, सतयुग में सतयुग का ही पार्ट चलेगा, वहां ये बातें होती नहीं कलयुग की। यहां तुमको सृष्टि चक्र का ज्ञान बुद्धि में फिरता रहता है, तुम्हारा नाम ही है सृष्टि चक्र का ज्ञान बुद्धि में फिरने वालों का, क्या नाम है? स्वदर्शन चक्रधारी। लक्ष्मी नारायण को थोड़ी स्वदर्शन चक्रधारी कहा जाता है, ये है ही यहाँ के लिए, स्वदर्शन चक्र है ही संगम युग के लिए। मूल वतन में तो सिर्फ आत्मा ही रहती है, सूक्ष्म वतन में तो कुछ नहीं है। सूक्ष्म वतन तो केवल संगम पर बाबा रचते हैं, ताकि स्थापना हो सके, विनाश का साक्षात्कार हो सके। तो बाबा कहते हैं तो संगम युग की बात है, मूल वतन में तो सिर्फ आत्मा ही रहती है, सूक्ष्म वतन में तो कुछ नहीं, मनुष्य जानवर पशु पक्षी आदि सब यहाँ होते हैं। अब सूक्ष्म वतन में थोड़ी जानवर होंगे जो दिखाते शंकर जी बैल पर सवार हुए, तो बाबा कहते ये सब यहाँ होते हैं। सतयुग में मोर आदि दिखाते हैं, अब देखो बाबा ने क्या राज बताया, सतयुग में मोर आदि दिखाते हैं। अब ऐसे नहीं, क्या नहीं, कि वहां मोर का पंख निकाल पहनते हैं, अब अभी मोर के पंख है, उसका पंख अगर निकालेंगे उसको कष्ट तो होगा ना मोर को, और न पंख निकाल कर पहनते हैं मोर को थोड़े ही दुख देंगे। मोर का अगर पंख निकालते हैं तो दुख तो होगा ना, जैसे बाल निकालना होता है तो कष्ट तो थोड़ा होता है ना जब बाल निकालते हैं, जड़ से मानो निकालते भी हैं तो कष्ट तो होता है, तो पंख निकालने से भी कष्ट तो होता है मोर को। और दूसरी बात, ऐसे भी नहीं कि गिरा हुआ मोर फिर पहनते हैं, चलो भाई नहीं निकाला पंख, वो मोर के पंख वैसे भी अपने आप भी निकल जाते हैं, तो ऐसे नहीं कि गिर गया पंख और वो बैठ के श्री कृष्ण के मुकुट में डालेंगे, गिरा हुआ पंख में नहीं डालेंगे तो क्या होगा, तो क्या श्री कृष्ण का मोर पंख जो दिखाते हैं वो नहीं होगा क्या उनके मुकुट में, देखो बाबा क्या कहते हैं। तो ऐसे भी नहीं कि मोर का गिरा हुआ पंख ताज में लगाएंगे, नहीं, ताज में भी ये झूठी निशानी दे दी है। श्री कृष्ण को मोर का पंख दिखाते या बलराम साथ में दिखाएंगे तो बलराम को तो पंख नहीं है, पर श्री कृष्ण को पंख है बताने के लिए ये दोनों में अंतर है। तो श्री कृष्ण को हमेशा मोर का पंख दिखाएंगे, पर बाबा कहते हैं ताज में भी ये झूठी निशानी दे दी है, क्योंकि वहां कोई गिरा हुआ पंख भी नहीं निकाल वो डालेंगे ताज में, और न ही पंख तोड़ेंगे। कलयुग में तो बहुत तोड़ते हैं, खास इनकी खेती होती है, हमने देखा पता नहीं किस देश में मैं गई थी तो वहां मोर के पंख बिकते हैं, तो हमने कहा इतने सारे मोर के पंख आप कैसे बेचते हो, तो कहा यहाँ खेती होती है, मोर को पैदा करते उनके पंख बनाते और वो मोर दिखाए सारे उनके पंख टूटे हुए बिल्कुल ऐसे बद्दे लग रहे थे, क्योंकि वो पंख तोड़ करके वो बेचते अपनी कमाई करते, तो बहुत बुरा लगा कि देखो कैसे पंखों को तोड़ करके बेचते हैं और वो बिना पंख के मोर, और वो दिखाए पिंजरे में कैद है। तो बाबा कहते देखो भारत का तो पक्षी मोर है, कितना भारत में मान है, तो ये मोर को कभी भी पिंजरे में नहीं रखना होता है, अगर पिंजरे में मोर को रखा तो सरकार बिल्कुल मना करती है मोर को खुला छोड़ो। तो देखो बाबा कहते हैं नहीं, ताज में भी ये झूठी निशानी दे दी है, वहां सब खूबसूरत चीजें होती है, गंदी कोई चीज का नाम निशान नहीं, ऐसी कोई चीज नहीं होती जिसको देखकर घृणा आए। अब बिना पंखों का वो मोर अगर होगा कितनी घृणा आएगी, न कैसा बना दिया मोर का हाल की हालत, वहां सब खूबसूरत चीजें होती है, गंदी कोई चीज का नाम निशान नहीं, ऐसी कोई चीज नहीं होती जिसको देखकर घृणा आए, है ना। कलयुग में तो बहुत ऐसी चीजें हैं जिनको देखकर की घृणा आती है, यहाँ तो घृणा आती है ना, वहां जानवरों को भी दुख नहीं होता, सत्युग कितना फर्स्ट क्लास होगा, नाम ही है स्वर्ग, हेवन, नई दुनिया। अभी तो हमने देखा विदेश के जितने भी भाई बहन यहाँ आते हैं ना, कोई दूध नहीं पीता, ये तो उनको आश्चर्य होता है भारत वाले इतना दूध क्यों पीते हैं, आप विदेश वाले नहीं पीते, वेगन 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 कहकर के दूध दूध की कोई भी चीजें नहीं खाते, तो कई जो भारत वाले वो तो खाते विदेश में रहते हैं, पर विदेशी नहीं खाते, क्योंकि वहां देखते हैं गायों को कैसे मारते हैं, बिल्कुल इतना टॉर्चर करते हैं और उनका मांस बनाते हैं, तो देख करके भी कैसे होता है कि, और उनका हम दूध पीते हैं, वो तो उनके तो जो गाय के बछड़े बछड़ी है उनके लिए है, मनुष्यों के लिए नहीं है। तो देखो वास्तव में देखा जाए मनुष्य बड़े हो गए तो छोटा बच्चा दूध पीता है, बड़े का दूध पीते हैं, हाँ बड़े थोड़ी कोई भी जानवर बच्चा होगा गाय का बछड़ा वो बछड़ी वही दूध पियेंगे माँ का, अब बड़े हो गए थोड़ी वो दूध पियेंगे, लेकिन मनुष्य पीते तो विदेशी नहीं आते। तो हमको जब विदेशियों को टोली देनी होती है ना तो दो प्रकार की टोली रखते हैं, एक वेगन हाँ जो दूध की नहीं है, और दूसरी अगर दूध की है तो बिना दूध वाली जो दूसरी प्रकार की टोली है वो रखते हैं। तो देखो तो बाबा कहते हैं गंदी कोई चीज का नाम निशान नहीं, जो घृणा आए देख करके। यहाँ तो घृणा आती है ना, वहाँ जानवरों को भी दुख नहीं होता। सत्यु कितना फर्स्ट क्लास होगा, नाम ही है स्वर्ग, हेवन, नई दुनिया। यहाँ तो पुरानी दुनिया में देखो, बरसात के कारण मकान गिरते रहते हैं, बहुत बुरा हाल है पंजाब में। देखो कैसे, कितने फोटोज दिखाते हैं, वो सारी खटिया हिल रही जा रही है, जानवर बहते जा रहे हैं, गैया बहती जा रही है, मनुष्य बहते जा रहे हैं, ऐसी दुर्दशा थी। तो बाबा कहते हैं मकान कितने गिरते रहते हैं, मनुष्य मर जाते हैं, अर्थक्वेक होगी तो सब दब कर मर जाएंगे। भगवान उवाच, अर्थक्वेक होगी सब दब कर मर जाएंगे। उस दिन एक फोटो किसने दिखाया कि ये जो पंजाब में जो इतनी बाढ़ आई ना, तो कई मकान गिर गए, ये गिर गए, तो उसको जब देखा तो इतने सारे डॉलर्स वो मकान में दबे हुए मिले, मिट्टी में ऐसे वो इतने खत्म हुए हो गए, और क्या, और डॉलर्स, कितना धन, कितना पैसा हाँ निकाला। तो बाबा कहते ये सब मिट्टी में मिल जाएंगे। सत्युग में बहुत थोड़े होंगे, फिर बाद में वृद्धि को पाते रहेंगे। पहले सूर्यवंशी होंगे, जब दुनिया 25% पुरानी होगी तो पीछे चंद्रवंशी होंगे। सत्युग 1250 वर्ष है, वो है 100% नई दुनिया, जहां देवी देवता राज्य करते हैं। तुम्हारे में भी बहुत इन बातों को भूल जाते हैं। राजधानी तो स्थापन होनी ही है, हार्ट फेल नहीं होना चाहिए, कोई बाबा को छोड़ के गया, हार्ट फेल नहीं होना चाहिए, मना थोड़ा दुख नहीं करना चाहिए, उसका पार्ट ही इतना होगा, क्या कर सकते हैं। ये तो पुरुषार्थ की बात है ना, बाप सभी बच्चों से एक समान तदबीर तो कराते हैं, मुरली सबके लिए एक जैसी है तो तदबीर सबके लिए एक जैसी बताते हैं। अब तकदीर हरेक की अपनी अपनी है, तुम अपने लिए विश्व पर स्वर्ग की बादशाही स्थापन करते हो, अपने को देखना है हम क्या बनेंगे। अच्छा, अपने को देखना हम क्या बनेंगे। मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति, मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला, इस पुरुषोत्तम युग में स्वर्ग के देवी देवता बनने की पढ़ाई पढ़कर स्वयं को लायक बनाना है। पुरुषार्थ में हार्ट फेल यानी दिल शिकस्त नहीं होना है। दो, उसका नंबर, इस बेहद के खेल में हर एक्टर का पार्ट और पोजीशन अलग अलग है, जैसी जिसकी पोजीशन वैसा उसे मान मिलता है। ये सब राज समझ वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी का सिमरण कर स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। वरदान, बाप की हर श्रीमत का पालन करने वाले सच्चे स्नेही आशिक भव। बाप की हर श्रीमत का पालन करने वाले सच्चे स्नेही आशिक भव। जो बच्चे सदा एक बाप के स्नेह में लवलीन रहते हैं, उन्हें बाप का हर बोल प्यारा लगता है। क्वेश्चन समाप्त हो जाते हैं। ब्राह्मण जन्म का फाउंडेशन स्नेह है। जो स्नेही आशिक आत्माएं हैं, उन्हें बाप की श्रीमत पालन करने में मुश्किल का अनुभव नहीं होता है। स्नेह के कारण सदा यही उमंग रहता कि बाबा ने जो कहा है वो मेरे प्रति का है। मुरली से प्यार, बाबा से प्यार, एक एक माँ वाक्य से प्यार, और जो कहा वो मेरे प्रति का है, मुझे करना है। स्नेही आत्माएं बड़ी दिल वाली होती है, इसलिए उनके लिए हर बड़ी बात भी छोटी हो जाती है। स्लोगन, कोई भी बात को फील करना, ये भी फेल की निशानी है। फील करना, फीलिंग आना, ये फ्लो है, बाबा कहते हैं फीलिंग फ्लो है, ये फेल की निशानी है। अव्यक्त इशारे, अब लगन की अग्नि को प्रज्वलित कर योग को ज्वाला रूप बनाओ। लगन की अग्नि को प्रज्वलित कर योग को ज्वाला रूप बनाओ, उसके अंतर्गत ज्वाला स्वरूप की स्थिति का अनुभव करने लिए निरंतर याद की ज्वाला प्रज्वलित रहे। इसकी सहज विधि है सदा अपने को सारथी और साक्षी समझकर चलो। आत्मा इस रथ की सारथी है, ये स्मृति स्वतः ही इस रथ यानी देह से व किसी भी प्रकार के देह भान से न्यारा बना देती है। स्वयं को सारथी समझने से सर्व कर्म इंद्रियां अपने कंट्रोल में रहती है। सूक्ष्म शक्तियां मन बुद्धि संस्कार भी ऑर्डर प्रमाण रहते हैं। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। आप सबको ज्ञात हो कि ज्ञान सरोवर में, मेडिकल विंग चल रहा है, तो मेडिकल विंग का उद्घाटन करने के लिए, कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन करने लिए भारत के आयुष मंत्री आ रहे हैं। वो आयुष मंत्री अभी सुबह 9 बजे यहाँ पहले पहुँचेंगे, फिर नहीं आएंगे। अच्छा, अभी
ओम शांति। सभी भाई बहने बैठे रहें, खास करके आगरा सब जोन के भाई बहने बैठे रहेंगे। और जैसा कि आप श्रीमान बता रही हैं कि ज्ञान सो में मेडिकल विंग की जो कॉन्फ्रेंस है उसके लिए उद्घाटन के लिए दिल्ली से आरोग्य मंत्री आ रहे हैं और पांडव वन कब पहुंचेंगे वो कोई टाइम पक्का नहीं है। अच्छा, बाकी भी बैठ सकते हैं क्योंकि अभी आगरा सब जोन वालों को बाबा के घर से सौगात भी मिलेगी और इन बहनों के मन में कुछ एक शुभ संकल्प। शीला बहन कहाँ है? आओ ना शीला बहन, शीला बहन आओ। कहाँ है भावना बहन? आओ,
एक डांस है। मैंने तो भावना की बात नहीं कर रही, नहीं अभी कर रहा हूँ, क्या नाराज हो? कोई बात, अभी आई नहीं रहा, आप निश्चिंत रहो, बात ही करता हूँ।
हाँ, शीला बहन किस किस को बुला रहे? बुलाओ ना।
ओम शांति। अभी हमारे बीच में आदरणीय शीला दीदी, हमारे आगरा जोन के इंचार्ज दीदी मंच पर आएंगे और आज विशेष हमारी दिली इच्छा हुई कि हम आदरणीय दीदियों ने हमारे ऊपर इतना परोपकार किया है कि हमें यहाँ मधुबन पांडव भवन में भट्टी करने का, बाबा के घर में तपस्या करने का ये सुअवसर दिया। इसके लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं दीदियों के। तो इस कारण से मन में इच्छा हुई कि हम दीदियों का सम्मान करें, तो आदरणीय शशि दीदी जी की हमें अनुमति मिली, शीलू दीदी की अनुमति मिली, तो इस अनुसार ये कार्यक्रम यहाँ पर रखा है। और अभी मैं आदरणीय कविता दीदी को भी आमंत्रित करती हूँ, वो भी मंच पर आ जाएं। और जिन्होंने भट्टी को कंडक्ट किया और जिन्होंने हमें ये 4 दिन से लगातार हमें पालना दी, हमारी आदरणीय बिंदु दीदी जी, कृपया मंच पर आ जाएं बिंदु दीदी जी। तो अभी हम ये सम्मान का कार्यक्रम करेंगे आदरणीय दीदियों का। तो आप सभी भट्टी वाले जो भी भाई बहने आए हैं, आप सभी को सौगात भी मिलेगी, तो सभी यहाँ ही बैठे रहेंगे, नाश्ते पर नहीं जाएंगे। अभी सौगात के बाद ही आप सभी नाश्ते पर जाएंगे। और जो भी आप यज्ञ के लिए जो आपने दिया है आए हैं वो तो ठीक है, लेकिन आप अपने हाथ से कुछ करना चाहते हैं दीदियों के सम्मान में यज्ञ के प्रति, तो आप यहाँ सौगात लेने आएंगे तो आप यहाँ दीदी के पास में रख सकते हैं। अभी हमारे बीच में प्रवीणा बहन मंच को कंडक्ट करेंगी दीदियों का सम्मान कराने के लिए। तो जो पीछे बैठे वे भी आगे आ गए जी। प्रवीणा बहन आए
झरना बहता है।
हाँ।
यही नाम है सिर्फ संगीत से झरना बहता है। मैं बोलता हूँ भैया
आप दूसरा दे दो।
ओम शांति। आगरा सब जोन की सभी भाई बहने जो भी बट्टी में आए हैं बैठे रहे, इसके अलावा और किसी को भी ये कार्यक्रम देखने के लिए बैठना है तो वो बैठ सकते हैं। और कार्यक्रम के बाद आगरा सब जोन के जो भी बट्टी के भाई बहने हैं उन्हें बाबा के घर से सौगात मिलेगी, और सौगात कोई मिस नहीं करेंगे क्योंकि बाबा के घर से सबको सौगात मिलती है। और आगरा सब जोन की तो बहुत विशेषताएं हैं। हमें याद आता है कि साकार बाबा ने आगरा में विशेष सेवाएं कराई और आगरा के लिए खास महेंद्र भाई जी को भेजा था, और महेंद्र भाई अपने साथ विमला दीदी को लेकर के गए। और आगरा में सभी दादियों ने सभी ने बहुत सेवा की, और सेवा के साथ साथ वहां से बहुत कुमारियां निकली और बहुत अच्छी सेवाएं चलती रही। और ड्रामा अनुसार अभी आगरा के अंदर भी एक बहुत बड़ा म्यूजियम बना है, उस म्यूजियम में देश विदेश के बहुत टूरिस्ट आते हैं और वीआईपीस भी आते हैं, खास करके हमारे निर्भय भाई दादी जानकी जी का शुभ संकल्प था कि आगरा में एक सुंदर म्यूजियम हो, क्योंकि वहाँ आगरा जो है ऐतिहासिक रीति से बहुत ही फेमस है। और आगरा के लिए इन सब ने मिलकर के विदेश ने मिलकर के एक बहुत सुंदर म्यूजियम बनाया, और विदेश के टूरिस्ट बहुत आते रहते हैं और अच्छा अनुभव करके जाते हैं। अभी ड्रामा अनुसार आप सबको मालूम हो आगरा सब जोन के इंचार्ज हमारी शीला दीदी है, ताली बजाओ। और शीला दीदी के साथ साथ हमारी कविता बहन और अश्विना बहन है, दोनों के लिए ताली बजाओ। अश्विना बहन ड्रामा अनुसार किसी कारण से नहीं आई हैं, लेकिन ये तीनों बहनें आगरा सब जोन की सभी सेवाओं को मिलकर के बहुत प्यार से कर रही हैं, इसलिए हम इनको बाबा की तरफ से मधुबन की तरफ से बहुत बहुत बधाई देते हैं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। आगरा सब जोन एक पूरे सारे जोन में से एग्जाम्पल बने, आगे बढ़े, हमारी यही शुभकामना है। और सबको मिलकर के जैसे कर रहे हैं वैसे ही करते रहे, ऐसा है। देखिए और खुशखबरी, पहला जो आगरा का सेंटर था उसको कमला नगर कहते थे, वहाँ पर बिमला बहन रहती थी, अब वहाँ पर चार मंजिला मकान बना है और बहुत सुंदर बना है, ताली तो बजाओ, खुश होना चाहिए। अभी वहाँ आगरा के जितने भी सेंटर्स हैं वो इतने बड़े बड़े सेंटर्स हैं, और सभी सेंटर पर बहुत भाई बहने आते हैं। अच्छा, वहाँ दीदी का शुभ संकल्प है, चार मंजिला है तो लिफ्ट तो लगेगी ना, लगेगी या नहीं लगेगी, लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए है? तो लिफ्ट में तो सब कणा कणा डालेंगे, हो जाएगा, इसमें कौन सी बात है। कणा कणा से ही तो तालाब भरता है, बूंद बूंद से तालाब भरता है। तो इसलिए आपको क्या करना है, कणा कणा डालते ही लिफ्ट की तैयारी हो जाएगी। और जब लिफ्ट है फिर तो सब बहुत आएंगे आपके पास, फिर क्या करोगे? लिफ्ट लगेगी तब आएंगे, तब तक नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, जैसे मौका मिलेगा तो चक्कर लगाएंगे। अब इसको और अच्छी तरह से सिस्टम बन जाए तो फिर देखते हैं ना, ठीक है। अच्छा, ओम शांति। अभी बोलो
ओम शांति। मन सुशोभित है इन दिव्य फरिश्तों से और इनके सम्मान में उनके पीछे खड़े हैं हमारी रूहानी फौज, रूहानी सेनानिकाएं, आदरणीय दीदियां। इनके बीच में मैं आमंत्रित कर रही हूं आदरणीय नीलम दीदी हल्द्वानी, आप भी मंच पर आ जाएं आदरणीय दीदियों के सम्मान में। और शुरू करने जा रही हैं इन दीदियों का, इन दिव्य फरिश्तों का, जिनसे मधुवन पूरा विश्व और पूरा जहान रोशन होता है, जिनकी चलन से चाल से ये वादियां महकती हैं, जिनकी वाणी से वातावरण पवित्र बनता है। ऐसी दीदियों के सम्मान में मैं सर्वप्रथम मंच को सुशोभित कर रही हैं। हमारे बीच में आदरणीय शशि दीदी जी, संयुक्त प्रशासिका ब्रह्मा कुमारी, प्रमुख डायरेक्टर पांडव भवन, हम जोरदार करतल ध्वनि से आपका हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। हमारे बीच में मंद मंद मुस्कान से मंच को सुशोभित कर रही हैं आदरणीय सीलू दीदी जी, उपाध्यक्ष एजुकेशन प्रभार, डायरेक्टर पांडव भवन, आपका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। हमारे बीच में मंच को सुशोभित कर रहे हैं आगरा सब जोन की प्रभारी के रूप में, आगरा सब जोन की हीरो एक्टर के रूप में आदरणीय शीला दीदी जी, आपका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। हमारे बीच में मंच को सुशोभित कर रहे हैं आदरणीय कविता दीदी जी, जॉइंट डायरेक्टर आगरा सब जोन, आपका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। और हम सब की भट्टी को बहुत ही सुंदर तरीके से हम सबको पनिमित सिरसा हरियाणा, आपका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। तो चलते हैं आदरणीय दीदियों के सम्मान में मैं सर्वप्रथम आत्मिक किस्मती का तिलक बिंदी लगाने के लिए आमंत्रित कर रही हूँ ब्रह्मा कुमारी मंजरी दीदी। सभी दीदियों को आत्मिक किस्मती का तिलक प्रदान करेंगी ब्रह्मा कुमारी मंजरी दीदी।
एक कुर्सी रख दीजिए भैया, कोई ध्वनि चला दे। स्वागत,
हम सभी तालियां बजाते रहेंगे आदरणीय दीदियों की। और ये सिलसिला स्वागत का चलता रहे। मैं आदरणीय दीदियों से अनुरोध करती हूँ आदरणीय शशि दीदी जी को माला पहनाने के लिए मैं आमंत्रित कर रही हूँ, उससे पूर्व चुन्नी पहनाने के लिए आमंत्रित कर रही हूँ ब्रह्मा कुमारी राज दीदी ट्रांस यमुना आगरा। आदरणीय शशि दीदी जी को चुन्नी पहनाएंगी, आदरणीय सीलू दीदी जी को चुन्नी से स्वागत करने के लिए आमंत्रित कर रही हूँ ब्रह्मा कुमारी नीलम दीदी प्रभारी खुर्जा आगरा। चुन्नी की ट्रे लेकर पहुंचे दीदियां। आदरणीय शीला दीदी जी को चुन्नी पहनाने के लिए आ रही हैं सरिता दीदी, सेक्टर 7 आगरा।
शीलू दीदी जी को चुन्नी पहनाने के लिए आ रही है नीलम दीदी थोड़िया। शीला दीदी जी को चुन्नी पहनाने के लिए आ रही है आदरणीय सरिता दीदी। आदरणीय कविता दीदी को चुन्नी पहनाने के लिए मैं आमंत्रित कर रही हूँ। नीलम दीदी, रॉबिन मैम, अलीगढ़ आगरा। आदरणीय कविता दीदी को चुन्नी पहनाने के लिए स्टेज पर पहुंचे। आदरणीय बिंदु दीदी जी को चुन्नी पहनाने के लिए मैं आमंत्रित कर रही हूँ। ज्योत्सना दीदी, स्वागत का यूं ही चलता रहेगा। हमारे बीच में आदरणीय दीदियों के सम्मान में माला पहनाने के लिए आदरणीय नीलम दीदी को चुन्नी पहनाने के लिए मैं आमंत्रित कर रही हूँ। रानी दीदी, और अपने बहादुर की माला लेकर के मंच की ओर बढ़े आदरणीय दीदियाँ। आदरणीय सती दीदी जी को भावना दीदी मन के भावों की माला पहनाने के लिए स्टेज की ओर आए। आदरणीय शीलू दीदी जी को माला पहनाने के लिए आमंत्रित कर रही हूँ। रानी दीदी जी, आदरणीय शीला दीदी जी को माला पहनाने के लिए आमंत्रित कर रही हूँ। मधु दीदी शास्त्री, कविता दीदी जी को माला पहनाने के लिए आमंत्रित कर रही हूँ। विनीता दीदी मोहन नगर, और आदरणीय नीलम दीदी को माला पहनाने के लिए आमंत्रित कर रही हूँ। सूरजमुखी दीदी, माला पहनाने के लिए आमंत्रित कर रही हूँ। मंजू दीदी सही कर, आदरणीय शशि दीदी जी को काज पहनाने के लिए आमंत्रित कर रही हूँ। सूर्यमुखी दीदी, और शीलू दीदी जी को काज पहनाने के लिए आमंत्रित कर रही हूँ। गीता दीदी, दीदियों के सम्मान में कुछ पंक्तियाँ। गंभीरता में ही गंभीरता का सुंदर संगम है आदरणीय शशि दीदी जी। सेवा में अग्रणी, प्रशासन में अनुपम, संदेशी का वरदान प्राप्त कर सबको नजदीक लाती है। प्यारे बाबा का संदेश सबको लुटाती है। ऐसी आदरणीय सम्माननीय शशि दीदी जी, आदरणीय शीलू दीदी जी, नन्हे कदमों की जिन्होंने इस धरा को पावन बनाया है। बाल्यकाल से ही बाबा की गोद का प्यार पाया है। ज्ञान की ज्योति बन अज्ञान का अंधेरा मिटाया है। राजयोग के मधुर वचनों से हर हृदय को स्नेही बनाया है। हम ताली बजाने में कमजोर ना पड़े, निरंतर तालियां इन चैतन्य दीदियों के सम्मान में, इन दीदियों के सम्मान में बजाती ही रहेंगे। हर कदम यहाँ पर बिल्कुल अकेला है। हर कदम यहाँ पर बिल्कुल अकेला है और हर पिछले कदम के साथ मिला है, हर पिछले कदम के साथ मिला है, मिलाता चल रहा ये उनके कदम जिनका हर कदम कर्म योग के साथ खेला है, जिनका हर कदम कर्म योग के साथ खेला है। दिव्य हरि से रूहानी